sea, كان हार्थपोषक उनकी इतनी एकाग्र चित्त से थी कि हिरण्यकशिपु को खुद का शरीर चींटियों ने पूरा मांस त्वचा और शोणितम, शोणितम का अर्थ है रक्त, रक्त भी पी लिया, ये तीनों चीज नष्ट हो गई है। प्रभा जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये कीड़े वगैरह शरीर को कब खाते हैं, जब व्यक्ति मर जाता है तब उसको कीड़े मकोड़े खाना चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पर हिरण्यकशिपु मरा नहीं है, लेकिन फिर भी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो जो सर्वसामान्य व्यक्ति है अगर वो इसको देखता तो वो निष्कर्ष निकालता कि ये मर गए, लेकिन जब ब्रह्मा जी आए उन्होंने देखा कि नहीं नहीं ये मरा हुआ नहीं, हालांकि इसके मांस त्वचा खून वगैरह कुछ है नहीं, फिर भी मरा हुआ नहीं है। न ददर्श प्रतिच्छन्नम वल्मीक तृणकीचक है। तो वल्मीक ये शब्द का अर्थ क्या देखा था कल, किसी ने ध्यान दिया? हाँ वो तो उगा था, लेकिन वल्मीक ये शब्द का अर्थ क्या था? हाँ मिट्टी का ढेर या एंट हिल, जहाँ पर चींटियां घर बनाती हैं। हाँ दीमक, दीमक दीमक का भी घर जिन्हें हम लोग क्या ट्रांसलेशन दिया है वल्मीक एंटिल। तो वो उसके शरीर के ऊपर एंटिल वल्मीक ये शब्द वाल्मीक ऋषि से भी आज संबंधित है। उन्होंने भी पहले इतने निर्दयी थे, वो जंगल में होने वाले पशु पक्षियों की हत्या करते थे, बाद में इतने एकाग्र चित्त से भगवान का नाम लेने में लग गए और शुरुआत में तो उनको भगवान का नाम तो उच्चारण नहीं हो रहा था, राम की जगह वो मरा 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 और बाद में वो सही हो गए। तो इतना पाप करने के कारण उनकी जिह्वा भी ठीक तरह से भगवान का नाम को उच्चारण नहीं कर पा रहे, लेकिन बाद में वही वाल्मीकि ऋषि उनके साथ भी ऐसे इतना एकाग्रचित्त से उन्होंने भगवान का नाम लिया कि उनके शरीर के ऊपर भी ये पापी या वल्मीक ये बन गए। और पिप्पलिका भी प्राचीर्ण, पिप्पलिका भी यानी कि चींटियों द्वारा चारों ओर से सब शरीर हिरण्यकशिपु का खा गई चींटी। तो इसमें मेन हमारे लिए सीख है कि एक भौतिक चीज पाने के लिए व्यक्ति कितना एकाग्र हो गया उसके खुद के शरीर का भी ध्यान उसको नहीं रखा, और ये कुछ एक दो घंटा नहीं किया, कई साल सैकड़ों साल की है। तो हमें कम से कम दिन में दो घंटा बैठने के लिए, ठीक तरह से बैठने के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए, नहीं तो ये अगर हम करते नहीं तो हम हमारी इच्छा भगवान प्रकट नहीं करते कि मुझे केवल आप ही चाहिए, ऐसी इच्छा प्रकट नहीं होगी। भगवद गीता के श्लोक में 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले इसके पहले श्लोक में बोलते हैं कि हमेशा मई एव मन आदर्श मई बुद्धि निवेश, हमेशा मन और बुद्धि मुझ में लगाओ और इस तरह से तुम खुद मुझ में वास करोगे और फिर मेरे पास आओगे। लेकिन ये करना संभव नहीं है तुम्हें, तो क्या करो? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। तुम्हारा चित्त मुझ में स्थिर करने के लिए तुम्हारे लिए ये शक्य नहीं है। शक्नोसि न शक्नोसि मयि स्थिरम, इतना एकाग्रचित्त करने के लिए शक्य नहीं, तुम्हें संभव नहीं है। तो क्या करो? अभ्यास योगेन ततो। प्रभुपाद जी अभ्यास योगेन बोलते हैं कि भक्ति के विधि विधानों का पालन, अभ्यास योगेन ततो और माम इच्छा तुम धनंजय। मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए इन नियमों का पालन करो। सिर्फ वरिष्ठों ने बोला है, सीनियर ने बोला है, इसलिए पालन करना है, कर करो, ऐसा नहीं। साथ साथ वो इच्छा भी जागरूक रखो मुझे पाने की। तो जितनी तीव्र इच्छा होगी उतने हद तक ये हम विधि विधान भी अच्छे ढंग से पालन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हिरण्यकशिपु की इच्छा बहुत तीव्र थी, इसके लिए वो खुद का शरीर भी भूल गया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कई उदाहरण भगवद गीता में भी दिए हुए हैं और कुछ भागवतम में भी दिए। तो भगवद गीता में भगवान कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, अनन्य चेतहा सततम यो मां विद्यते सन्ते। अनन्य चेतहा सततम यो मां वर्ति नित्य सन्ते। तो इसमें न अन्य या अनन्य चिंतयन्तो मां, इसमें भी एकाग्र चित्त से, एकाग्रता से मेरी आराधना करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। या मच्चित्तः मद्वत प्राण होदयन्त परम, तो उसमें भी मच्चित्त, या कल कल ही हमने भगवद गीता क्लास में देखा था परसों, मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसाद परीक्षित। कितनी बार भी ये बोला है। और भगवद गीता में भगवान एकाग्रता के लिए उदाहरण देते हैं, दीपक का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार एक रूम में दिया जल रहा है तो उसकी जो ज्योत है वो हिलती नहीं, लपकती नहीं, तो एकदम स्थिर रहती है, प्रकाश भी देती है स्थिर रहती है। तो उसी प्रकार से योगी का, भक्ति योगी का मन होना चाहिए, एक उदाहरण है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के संबंध में उदाहरण दिया जाता है, जैसे लेंस होती है बायोलॉजी में, वो डाइसेक्शन बॉक्स में लेंस, शुरुआत में उसका पहला एक्सपेरिमेंट, ये धूप में रखो वो लेंस और जमीन के ऊपर कागज रखो और लेंस का और कागज का जो अंतर है वो एडजस्ट करो, क्या हो जाता था वो कागज के ऊपर फोकस हो जाता था, सभी किरणें डायरेक्टली कागज के ऊपर पड़ रही है तो वो कागज को जला नहीं पा, लेकिन उसके बीच में लेंस डालो, सभी किरणों को एक पॉइंट पर लाओ, गिरने के बाद एक पॉइंट पर लाओ, तो वही किरणों की क्षमता बन जाती है कि वो कागज को जलाने की क्षमता उनमें आ जाती है। बचपन में या इलेवेंथ ट्वेल्थ में हमने ये बहुत बार किया, लेकिन कभी रिलेट नहीं किया कि अरे मेरा भी ऐसे, मेरे माइंड है, मेरे विचार ऐसे होने चाहिए। तो ये जो दृष्टि है उन्हीं चीजों को जरा अलग दृष्टिकोण से देखना, ये भक्तों के संपर्क में आने के बाद ही संभव हो पाती है। नहीं तो दुनिया की बहुत सारी चीजें हम देखते हैं उससे कुछ सीख नहीं सीखते। तो ये लेंस का भी कॉन्सेंट्रेशन के संदर्भ में उदाहरण दिया जाता है। और भागवतम में भी कहा गया कि अकाम सर्व काम हुआ मुख्य काम उदाहरणी तीव्र भक्ति योगी। तीव्र ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इंटेंस, इंटेंसिटी। तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन जरा उसमें तीव्रता होनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी पांचवी कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसके लिए पांचवी कक्षा में जो परीक्षा है वो बहुत कठिन है, लेकिन जैसे ही वो एक साल गिरा था तो छठी कक्षा में उसकी उसका सिलेबस बदल जाता है, उसके एग्जाम की तीव्रता बदल जाती है। तो उसी प्रकार से भक्ति में हमें अलग अलग हर साल हमारे लिए सिलेबस बदलेगा। जो टेस्ट हमने पास किए वही सिलेबस वापस नहीं आएगा, सिलेबस बदलेगा। तो इसलिए हमें मेरे लिए क्या परीक्षा है उसके बारे में ज्यादा चिंतन करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो बात ज्यादा सोचनी नहीं चाहिए। तो और एक तो कहा कि यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, उसमें भी अकिंचना समान थोड़ा सेम अर्थ है कि शुद्ध एकदम प्योर भक्ति या अकिंचना भक्ति, तीव्र भक्ति करने के बाद जो स्तर प्राप्त होता है वो अकिंचना भक्ति। या श्रीमद् भागवत में और एक जगह श्लोक है श्री सीतारामाधव भगवान की, श्री गौर नितान की, श्री सीताराम हनुमान की। तो ये अथ कौमी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग धर्म से संसिद्धिर हरितोषण। तो सभी वर्ण और आश्रम के और खुद के जो कार्य हैं वो भगवान हरि को संतुष्ट करने के लिए ही होने चाहिए। ये श्लोक बताने के बाद फिर तस्माद देरफोर तस्माद एकीन मनसा भगवान सर्वताम पति नित्यदा। इसलिए एकेन मनसा, इधर भी एकेन मनसा बोलना है, भगवान सात्वताम पति ही, सात्वताम यानी कि भक्त, सात्वता भक्तों की पति, भक्तों के संरक्षक। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य, हाँ उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, उनका नाम पर कीर्तन करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, और ध्येय हाँ ध्यान करना चाहिए, और पूजस्य पूजा करनी चाहिए। ये चार बातें यहाँ पर नहीं है, श्रोतव्य हाँ कीर्तितव्य ध्येय पूजस्य नित्यता हमेशा। तो ये भी और संदर्भ है। और इसके अलावा श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंध में 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में उदाहरण बयान दिया गया है, जो अवधूत ब्राह्मण उसके 24 शिक्षा गुरु थे उसमें से एक, फिर उसमें से एक जो शिक्षा गुरु थे एकाग्रत के बारे में, उसके बारे में श्लोक आता है। तदैवं आत्मनि अवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित् बहिरंतरंगान् यथेषु कारो नृपतिं व्रजन्तम् ईशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। तो 24 में से एक गुरु कौन थे, यथा ईशु, भगवत गीता में भी सुना था कि ईशु भी प्रतियोगस्यामी पूजा था वह हरिशोधन, उनके ऊपर मैं तीर कैसे छोड़ू। तो यहां यहां पर शब्द आ रहा कि यथा ईशु, जिस प्रकार ईशुकारो, ईशुकारो यानी कि एरो मेकर, ईशु यानी एरो, कारो यानी कि बनाने वाला, ये जो बाण बनाने वाला व्यक्ति था, नृपतिम व्रजंतम, जिस घर में वो या जिस जगह पर वो बना रहा था बाण, और उसको दोनों साइड से बहुत क्या कर रहा था, शार्प कर रहा था, नुकीला कर रहा था, तो उसी घर उसी जगह के पास से नृपतिम व्रजंतम, राजा का जो प्रोसेशन जुलूस, जुलूस बोलते राजा जा रहा था, लेकिन ईशो गतात्मा, वो बाण को नुकीला बनाने में गतात्मा इतना एब्जॉर्ब था, नददर्श पार्श्वे, उसने देखा तक नहीं, उसको पता तक नहीं चला कि कौन गया मेरे बाजू से। तो तत्र में सत्यानंद गोस्वामी महाराज बताते हैं कि जब ऐसा कहा गया कि नृपति व्रजंतम, इसका मतलब केवल राजा अकेला नहीं है, राजा यानी कि उसके मंत्री संतरी नगाड़ा और घोड़े, कितना शोर हुआ होगा। लेकिन ये व्यक्ति को न ददर्श, उसको पता भी नहीं चला, मैं उसने देखा भी नहीं, अरे क्या आवाज हो रहा है, इतना एब्जॉर्ब था। तो तथई तदैव तद एवं, तो उसी प्रकार से आत्मनि अवरुद्ध चित्तो, तो हमें आत्मा में अवरुद्ध चित्त होना चाहिए। न वेद किंचित, न वेद यानी जानना नहीं चाहिए, किंचित एनीथिंग मत्था परतरम नान्य किंचित, तो इधर भी श्रद्धा है, न वेद किंचित बहिर अंतरम वा, बाहर होने वाली विषय भोग की वस्तुएं जो मोटावाद कर रही है, जैसे राजा के साथ जो चीजें थी वो भी बहुत शोर मचा रही थी, लेकिन फिर भी ये अब्जॉर्ब होने के कारण इसने सुना नहीं। तो उसी प्रकार से हमें आत्मनि अवरुद्ध चित्तो इतना होना चाहिए कि ये विषय भोग की वस्तुएं बहुत आवाज कर रही है, फिर भी उनका आवाज से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अंतरम, केवल बाहर नहीं, अंतर में भी बहुत ये जो छेद शत्रु हैं वो भी आवाज करेंगे, तो उनसे भी प्रभावित नहीं होंगे। ये सीख हमें ये एरोमेटर से सीखनी चाहिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये भी कई बार हम देखते हैं लेकिन इस ढंग से नहीं बोलते। कहने का तात्पर्य है कि हिरण्यकशिपु हालांकि बहुत भौतिक इच्छा से प्रेरित था, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत यूनिक था, बहुत विशेष था। तो हमारा हमारे भक्ति में हमें सीखनी चाहिए हिरण्यकशिपु से। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, और पिछले श्लोक में और एक पॉइंट, तो इतना तपस्या तीव्रता से चल रहा था इसलिए शब्द आ रहा है विलक्ष विस्मितः प्राह हंसस्तम हंसवान्। इसलिए ब्रह्मा जी जिनके चार सर है और पूरा शरीर गोचे से बना हुआ है, उनके लिए भौतिक दुनिया की कौन सी भी चीज इतनी विस्मित करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो विस्मित हो गए। क्यों? क्योंकि ये हिरण्यकशिपु का कॉन्सेंट्रेशन देखिए कि कैसे इतना व्यक्ति खुद को भूल सकता है, खुद के शरीर को भूल सकता है। तो ब्रह्मा जी हुआ तो सो इम्प्रेस्ड, ब्रह्मा जी को इम्प्रेस किया हिरण्यकशिपु ने। तो फिर आज के श्लोक में वर्णन आ रहा है श्री प्रभुवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत है क्या है मतलब, हाँ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरा निबोध, अभी जरा बोध सुनिए, उठो उठो और जरा बोध सुनिए। यह शब्द आ रहा है उत्तिष्ठ भद्रम से, भद्रम यानी कि कल्याण हो, तुम्हारा शुभ हो। तो ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं क्यों कल्याण हो, तपः सिद्धोति काश्यप, क्योंकि तुमने तप में अभी परफेक्शन पा लिया है, तब में पूर्णता पाई है तुमने। काश्यप कौन बताएगा काष्ठ शब्द का? माता का नाम क्या? माता का नाम, पिताजी का नाम बताएगा, माता का नाम क्या? ओ क्या बताया, कश्यप और दीदी। कश्यप मुनि के दो पत्नियां थी, अदिति और दीदी। एक पत्नी से बन गए असुर, दूसरी पत्नी से बन गए सुर। दोनों पत्नी, दोनों सत्रह सत्रह थी, उसमें से दो ये एक ज्यादा था, दो ये प्रोमिनेंट। हाँ ऑल वेयर सभी ये सत्रह जो पत्नियां थी वो बहने थी। तो यहाँ शब्द है काश्यप, जैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन करते हुए भगवत गीता में शब्द आता है धार्तराष्ट्रां स्वबान्धवान्। तो यहाँ पर काश्यप और वरदो अहम अनुप्राप्तो, मैं यहाँ तुमको वर देने आया हूं। व्रीयताम मांगो, इप्सितो वरहा, जो आपकी अभिलाषा है वर मांगने की वो मांगो मेरे से। प्रियता यानी कि मैं, प्रियता यानी कि मांगो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं माधवाचार्य स्कंद पुराण से कुछ संदर्भ देते हैं। हिरण्य गर्भ, हिंदी में ट्रांसलेशन गलत हो गया, तो इसमें बताया है कि श्रील माधवाचार्य कोट फ्रॉम स्कंद पुराण व्हिच सेज दैट हिरण्यकश्यपु हैविंग बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा हु इज नोन एज हिरण्यगर्भ एंड हैविंग अंडरगॉन अ सीवियर ऑस्टेरिटी टू प्लीज हिम इज आल्सो नोन एज हिरण्यक। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु का ये नाम का विश्लेषण हमने सोचा अब तक सुना है, याद रहता है तुरंत वो। हिरण्य यानी कि सोना और कश्यप यानी कि सॉफ्ट बेड। लेकिन यहाँ पर हिरण्य कश्यप यानी कि हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा जी का एक नाम हिरण्य गर्भ है, हु इज नोन एज हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी। तो जिसने ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया और वर प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति को भी कहा गया है हिरण्यकश्यप। ये दूसरा अर्थ है हिरण्यकश्यप शब्द का। ये थोड़ा सा विश्लेषण रूपा जी देते हैं और फिर अगले लाइन में रूपा जी लिखते हैं कि राक्षसास एंड डीमंस वर्शिप वेरियस डेमिगॉड्स सच एज लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा जस्ट टू टेक द पोस्ट ऑफ दीज डेमिगॉड्स। तो इसमें अभी प्रश्न कर सकते हैं हम भगवद गीता में, आज जो अध्याय हमने पाठ किया उसमें श्लोक आ रहा था यजन्ति सात्विका देवान यक्ष रक्षांति राजसहा प्रेता भूतगणाश्चान्ये यजन्ति तामसा जना। तो इसका अर्थ क्या है, यजन्ति सात्विका देवान, पूछते हैं जो सत्वगुण में स्थित है वो लोग यजन्ति सात्विका देवान, देवताओं की पूजा कर। रूपा जी तात्पर्य में पहले परिचय में लिखते हैं इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सत्वगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं, इन देवताओं में ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे कि ब्रह्मा हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी जो कि देवता है उनकी उपासना कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते कि हिरण्यकश्यपु की उपासना सतोगुण में थी? तो यहाँ पर श्लोक तो पता है, यजन्ति सात्विका देवान, सत्वगुण में होने वाले यजन्ति देवान। ये तीनों यक्ष और राक्षसों की पूजा करने वाले और प्रेत तो भूत इनकी पूजा करने वाले, ये तीनों कैटेगरी के लोग ये बहुत इच्छा से बहुत परेशान परेशान नहीं कर सकते, बहुत उतावले रहते हैं भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन तीनों प्रकार के उपासक एक जाते भूत प्रेत के पास, एक जाते यक्ष और राक्षसों के पास, और तीसरे जाते देवताओं के पास। तो हिरण्यकश्यपु की उपासना ये रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन, जरा कैसे समझा जाए इसको, कौन बताएगा? मेरा प्रश्न क्लियर है? नहीं, प्रश्न यह है कि भगवद गीता में भगवान इस श्लोक में बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में होने वाले होते हैं। तो हिरण्यकश्यपु भी देवता ब्रह्मा जी उनकी उपासना कर रहे, तो उनकी उपासना सत्वगुण में है या नहीं?
इधर तो तत्पर भी पढ़ा मैंने इसलिए।
देवताओं की पूजा इन देवताओं का स्थान ग्रहण करने के लिए करते हैं। तो यहां पर भी हिरण्यकश्यपु को इच्छा थी कि मैं अमर बन जाऊं, तो इसके कारण उनकी उपासना सत्वगुण में नहीं थी। तो एक बात भगवान ने कही श्लोक में हिरण्य शास्त्री का देवन, लेकिन बाकी भी जो पैरामीटर से बहुत देखकर हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये सही नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं अभी आया हूं तुम्हें वर देने के लिए, जो चाहे तो मांग सकते हो। तो ब्रह्मा जी तो शुद्ध भक्त है, तो क्या उनमें ऐसा अहम भाव है कि अभी मैं कंट्रोलर हूं, मैं वर दे सकता हूं, मैं उपासक हूं? तो ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार दुकानदार के पास कोई जाता है तो दुकानदार बोलता है आपकी क्या मांग है। तो ये दोनों को पता है कि क्या मांगना है। मांगने वाले को पता है कि ये दुकान में होने वाली चीजों को ही मुझे मांगना है, उसके बाहर कुछ मांगता हूं तो भी पूरी नहीं कर पाए। अब देने वाले को भी पता है दुकानदार को कि मैं मेरे दुकान में होने वाली चीजों में से ही कुछ दे सकते। या कोई व्यक्ति जाता है कमिश्नर के पास, भक्त लोग जाते तो उनको वो भी बोल सकते क्या मैं आपकी सेवा करूं। तो वो दोनों को पता है कि क्या मांगना है, एक को पता है क्या मांगना है, दूसरे को पता है कि मैं क्या पूरा कर सकता हूं। या उसके ऊपर और जा सकते हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एकेडमी लॉर्ड और सुप्रीम लॉर्ड। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र है, उसके अंदर में उसके बाउंड्री में वो इच्छा पूरी कर सकता है उसके अनुयायी की या उसके फॉलोअर की, उससे बाहर नहीं कर सकता। और एक बात यहां पर हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो हिरण्यकश्यपु ने उनको जबरदस्ती प्रकट करवाया, ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने जो कीमत चुकानी थी प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी को, वो चुकाई और इसलिए प्रकट हो। इसलिए देवताओं को कहा गया है कि वो शॉप ओनर की तरह है, पैसा दो और वो मार दो। लेकिन भगवान हम कितनी भी तपस्या क्यों ना करें, हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम प्रकट हो गए। और देवता जो देते हैं वो हम जो चाहते हैं वो देते हैं। देवता लोग देखते नहीं कि ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन भगवान जो देते हैं वो पिताजी की तरह देते हैं कि ये चीज मेरे बेटे के लिए अच्छी अच्छी होगी या नहीं। जो सुसंस्कृत माता पिता हैं वो बच्चा कितना भी मांग क्यों ना करे, लेकिन वो बहुत सोचते हैं कि ये मांग रहा है लेकिन ये देने के बाद इसके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, ये सोच समझ के ही फिर देते। तो ये फर्क है। तो आज के क्लास में हमने ये देखा कि हिरण्यकश्यपु की तपस्या से हमें ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ भक्ति करनी चाहिए, वो सीखना चाहिए। और उसके बाद हमने ब्रह्मा जी क्यों आश्चर्यचकित हो गए वो देखा, और फिर हिरण्यकश्यपु शब्द का दूसरा अर्थ, और अंत में हिरण्यकश्यपु की तपस्या कौन सी है इस प्रकार की वो देखा। तो आज हम इधर ही रुकते हैं, वो सब कीर्तन के लिए दर्शन जाते हैं। संतरा श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय।